सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं अन्ताय मज्जहीणं दशदशय चावधीरं पडमजिनं वोक्षं नमे ऊणन्तरम् अनंतरुत्तुंगसन्नमहिदुग्गेजम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इस ग्रंथ की रचना की हुई थी और जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आज से अपनी 5वीं पुस्तक चालू हो जाती है। 5 पुस्तकों के द्वारा हमने अभी तक कौन कौन सी प्ररूपणाएं देखी, याद है? सत प्ररूपणा, हाँ, द्रव्य प्ररूपणा कहो या संख्या प्ररूपणा कहो, एक ही बात है। यानी द्रव्य प्रमाण अनुगम, द्रव्य प्रमाण या संख्या, यानी सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल। अब ये अंतर वाला भाग देखें, अंतरानुगम हम देखने जा रहे हैं। वो अंतर क्या है, वो सारी बातें अभी हम देखेंगे। अभी हमने जो मंगलाचरण कहा है, उस मंगलाचरण का अर्थ पहले देखते हैं। आपने इंट्रोडक्शन विषय परिचय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? विषय परिचय पढ़ना चाहिए। चौथे पुस्तक में आए हुए जो कुछ अपना जो सारा विषय हो चुका है, उसके संबंध में चर्चा समाधान भी इसमें है। जब पुस्तक बाहर आई तब बहुत लोगों ने प्रश्नोत्तर किए, उनसे प्रश्न पूछे, तो उनका समाधान उसमें से जो कुछ आवश्यक बातें यहाँ लिखी है वो भी पढ़ना अच्छा है। ये जैसे योग परिवर्तन व्याघात आदि बात, उसमें भी शंका समाधान है, वो पढ़ लेना आप सब। और ये जो अपनी 5वीं पुस्तक है, उस संबंध में भी उन्होंने इंट्रोडक्टरी, यानी इस पुस्तक में क्या आने वाला है, एक तो अंतर भाव और अल्पबहुत्व, क्योंकि हमने 8 अनुयोग देखे थे, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबहुत्व। उसमें से अभी अपना अंतर वाला प्रकरण चलेगा। अब देखते हैं, हम पहले मंगलाचरण देखेंगे। अभी तो हमने मंगलाचरण पढ़ा है, उसका अर्थ नीचे लिखा है, उसको पढ़ेंगे। पेज नंबर है, अभी एक ही नंबर है, वो बीच वाले जो पहले इंट्रोडक्टरी सभी इंडेक्स वाला प्रकरण पूर्ण होने के बाद, हाँ वही है। तो जीवट ठाणे अंतरानुगमो, ये अपना विषय चलेगा भी। आदि मध्य और अंत से रहित, अतएव अनंतर, ये अंतर अधिकार है, तो ये विशेषण किसको लगाए, देखो, अनंतर यानी अर्थात अनंत ज्ञान स्वरूप, जिसको आदि नहीं, जिसको मध्य नहीं है और जिसको अंत नहीं है, ऐसे अनंत ज्ञान स्वरूप। और दशशत के आधे अर्थात 500 धनुष ऊंचाई वाले दशदशय है ना, चाव, चाप यानी धनुष, ऊपर चाव शब्द है ना गाथा में, चाव शब्द आया, तो चाप का अर्थ होता है धनुष, दशदशय चाव है ना, तो चाप आपने सुना होगा कि नहीं सुना? चाप शब्द सुना होगा, ये चाव तो अर्धमागधी है, चाप शब्द आता है धनुष के लिए, ठीक है,
बर्तुल के
चाप, धनुष मराठी में, हाँ हाँ, तो उसी से ये नाम आया, ये इसी से वो नाम आया है, क्योंकि अपनी सारी भाषा है, प्राकृत से ओरिजिन है, तो बहुत सारे शब्द मिलते जुलते भी है कभी कभी। देखो, 500 धनुष ऊंचाई वाले अतएव उत्तुंग, कौन कौन से विशेषण है? पहले तो आया अनंतर, अब कहते उत्तुंग, तथापि ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म, अतएव अति दुर्ग्राह्य, ग्राह्य करने में बहुत कठिन। क्या कहे? सूक्ष्म है ना, जैसे इंद्रिय गोचर पदार्थ है उसको हम स्थूल कहते हैं, ये हाँ हाँ। ऐसे अभी वृषभ देव का वर्णन चल रहा है, प्रथम जी ने कहा ना पढ़म अजिनम, प्रथम तीर्थंकर जो वृषभ देव है उनको नमस्कार करके यहाँ शुरू करते हैं। तो अंतर अनुयोग है अपना, अंतर अनुगम, तो इसलिए भगवान को यहाँ अनंतर कहा, आदि मध्य अंत से रहित, ऐसे जिनका ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, और 500 धनुष ऊंचाई वाले, इसलिए उत्तुंग कहा। और ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म अतएव अति दुर्ग्राह्य, ऐसे प्रथम जिन श्री ऋषभनाथ को नमस्कार करके अंतरानुयोग द्वार को कहता हूँ, जिसमें अनंतर अर्थात अंतर रहित गुणस्थानों व मार्गणास्थानों का भी वर्णन है, तथा जिसमें उत्तुंग अर्थात दीर्घ कालात्मक व सूक्ष्म अर्थात अत्यल्प कालात्मक अंतरों का भी कथन है। देखो इन्हीं तीन विशेषणों पर उन्होंने अपना ये जो अंतरानुगम है उसकी भी बात की, अनंतर, उत्तुंग और अति दुर्ग्राह्य या सूक्ष्म, ये तीन विशेषण ऋषभ देव के लिए लगाए थे। अब कहते हैं ये जो गुणस्थान और मार्गणास्थान है वे भी अनंतर यानी निरंतर, ऐसे गुणस्थान मार्गणास्थान तो उसके साथ अंतर वाले भी कहेंगे, और उत्तुंग यानी दीर्घ कालात्मक यानी लंबा काल जिसका है उसका भी वर्णन हो गया, और सूक्ष्म यानी एक समय वाली भी जहाँ बात है, अंतर पड़ता है, वो अंतर क्या है किसको कहते वो बात आएगी, परंतु एक समय का भी जहाँ अंतर है उसको भी बताएंगे। सूक्ष्म अर्थात अत्यल्प कालात्मक यानी दीर्घ कालात्मक और अत्यल्प कालात्मक, ये किसकी बात चल रही है, सब विशेषण किसके है, अंतर के, ऐसा जो अंतर है, ऐसे अंतरों का भी कथन है। अतएव जो मति ज्ञान द्वारा दुर्ग्राह्य है, मति ज्ञान से तो जा यानी मति ज्ञान में मन भी आया ना, मन के द्वारा, तो मन के द्वारा जानने में भी जो दुर्ग्राह्य है कठिन है, ऐसी बात यहाँ बताते हैं। यानी एक ही उन्होंने दो ही लाइन बता दी, एक गाथा के द्वारा भगवान का भी वर्णन किया हाँ, और ये जो अंतर है उसमें भी वही विशेषण लगाए। देखो अंताई मज्जहीनम आदि अंत मध्यहीन दशद सय चाव दी हिरम, यानी दशशत यानी कितने हजार, दस शत यानी 100 को 10 गुना करो उसका आधा, दस अध का ना यानी 500, चावदी हीरम यानी 500 धनुष ऊंचाई वाले, और सूक्ष्म ऐसे जो पढ़म जी ने यानी वृषभ देव है, अभी नीचे क्या कहते हैं, वोच्छम नमीउण उनको नमस्कार करके क्या कहता हूँ, अनंतरम, अनंतर ऐसे अनंत उत्तुंग सन्नम इदुगेजम, यानी उसमें भी ये तीन विशेषण लगाए उन्होंने, अनंतर यानी अंतर रहित गुणस्थान मार्गणास्थान, उत्तुंग यानी दीर्घ कालात्मक, और सूक्ष्म यानी अत्यल्प कालात्मक, ऐसा जो अंतर है उनका मैं वर्णन करूँगा, इस तरह से यहाँ ग्रंथ के आदि में नमस्कार करके वो ग्रंथ का जो मंगलाचरण करते ना क्या बताने वाले हैं उसका विषय भी बता दिया। आप कुछ कहें, अत्यल्प कालात्मक, और इसलिए उसको दुर्ग्राह्य का, दुग्गेज्जम का ना उस ऊपर लिखा था दुग्गेज्जम। अब कहते हैं पहले में पहले अंतर किसको कहना, ये विषय परिचय वाला पेज निकालना, अभी इसमें नंबर तो नहीं है परंतु चार विषय परिचय जहाँ शुरुआत होती है, पहले तो चौथे भाग का शंका समाधान है, बीच में प्रश्नोत्तर वगैरह वगैरह पुस्तक चार के बारे में, और उसके बाद में विषय परिचय ऐसा है कि उन्होंने हाँ है ना पेज है हाँ, मैं राइट साइड में देख रही थी 14 13 नंबर षटखंडागम की प्रस्तावना वाला जो है ना, 13 पृष्ठ 13 मिला। देखो जीव स्थान की 8 प्ररूपणाओं में प्रथम 5 प्ररूपणाओं का वर्णन पूर्व प्रकाशित 4 भागों में किया गया है। अब प्रस्तुत भाग में अवशिष्ट यानी रिमेनिंग शेष 3 प्ररूपणाएं प्रकाशित की जा रही है, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम। ये 3 इस पुस्तक के विषय है। अब उसमें से अंतरानुगम क्या है उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें से विवक्षित गुणस्थानवर्ती जीव का उस गुणस्थान को छोड़कर अन्य गुणस्थान में वो च करना, उसका चले जाने पर पुनः उसी गुणस्थान की प्राप्ति के पूर्व तक के काल को अंतर। कोई मिथ्या तो गुणस्थान में है, मिथ्या तो में गुणस्थान में से अन्य गुणस्थान में चला गया, चौथे में चला गया, वहाँ एक अंतर्मूर्त रहा और पश्चात फिर मिथ्या तो गुणस्थान को आया, तो जितने काल तक वो मिथ्यात्व में नहीं था, छोड़कर चला गया और वापस लौटा, तो ये बीच वाला जो है काल उसको कहते अंतर। वो गुणस्थान छोड़कर अन्यत्र चला जाए उस काल को क्या कहते हैं, अंतर, व्युच्छेद या विरह काल कहते हैं। वो विच्छेद नहीं है, ये व्युच्छेद कहा, उस गुणस्थान का विच्छेद हुआ, कितने काल के लिए हुआ, तो उसको विरह काल भी कहते हैं। सबसे छोटे विरह काल को जघन्य अंतर और सबसे बड़े विरह काल को उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। गुणस्थान और मार्गणा स्थानों में, अभी गुणस्थानों की तो बात समझ सकते हैं, उस गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में चला गया और वापस उसमें आया। मार्गणा स्थान में भी ऐसा ही है, अभी गति मार्गणा होगी तो विशिष्ट गति को छोड़कर अन्य गति में चला गया और वापस उस गति में आएगा, तो उसका वो विशिष्ट गति का विरह काल कहेंगे या अंतर कहेंगे। मार्गणा की अपेक्षा कोई एक इंद्रिय है, अन्य इंद्रियों में चला गया, वापस वो दोबारा एक इंद्रियों में लौट आता है, उसका कितना अंतर होगा, तो कोई एक ही भव करके वापस आएगा और कोई वो दो सागरोपम करके आएगा, तो उसको उसका जघन्य और उत्कृष्ट अंतर कहेंगे। तो ये गुणस्थान और मार्गणा स्थानों में इन दोनों प्रकारों के अंतरों के प्रतिपादन करने वाले अनुयोग द्वार को अंतरानुगम कहते हैं। यानी अपने ये अंतरानुगम का विषय क्या है ये यहाँ स्पष्ट किया। पूर्व प्ररूपणाओं के समान इस अंतर प्ररूपणा में भी ओघ और आदेश की अपेक्षा अंतर का निर्णय किया गया है। पहले गुणस्थानों के लिए सामान्य से ओघ की अपेक्षा कहेंगे और बाद में मार्गणाओं की अपेक्षा कहेंगे। अर्थात यह बतलाया गया है यह जीव किस गुणस्थान या मार्गणा स्थान से कम कितने काल तक के लिए और अधिक से अधिक कितने काल तक के लिए अंतर को प्राप्त होता है। अंतर में ऐसा ही लेना कि वापस उसमें लौटने के पूर्व कितना काल अन्य गुणस्थान में बिताया। उदाहरणार्थ ओघ की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल होता है, इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। इसको निरंतर गुणस्थान कहते हैं। निरंतर बात हो तो नाना जीवों की अपेक्षा होगी, एक जीव की अपेक्षा तो वो जो को अभव्य होगा तो उसका मिथ्यात्व गुणस्थान अनादि अनंत चलेगा, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु
अंतर तो गुणस्थान छोड़े तो ही है, तो यहाँ तो अंतर,
इसलिए इसको निरंतर कहा। निरंतर अंतर नहीं है, वो निरंतर, यानी निरंतर वो छोड़ता ऐसा नहीं लेना, उसमें अंतर ही पड़ता नहीं, वो निरंतर। देखो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, तो आपको मालूम है ऐसे निरंतर गुणस्थान नाना जीवों की अपेक्षा कौन कौन से है, एक, चार, पांच, छः, सात और 13, इसको निरंतर गुणस्थान कहेंगे। अभी मार्गणाएं भी ऐसी है कोई कोई जिसमें अंतर नहीं पड़ता, उसकी भी बात करेंगे जब आएगी, तब देखेंगे। अभी हम देखो इसका अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व पर्याय से परिणत जीवों का तीनों ही कालों में व्युच्छेद, विरह या अभाव नहीं है। अर्थात इस संसार में मिथ्यादृष्टि जीव सर्वकाल पाए जाते हैं। यानी हमको आश्वस्त कराया कि चिंता मत करना संसार की, आप आराम से मोक्ष चले जा सकते हैं। अब एक जीव की अपेक्षा बताएंगे, किंतु एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का जघन्य अंतर्मूर्त काल प्रमाण है, मिथ्यात्व का अंतर चाहिए बीच में, अंतर अंतर लिखना चाहिए, एक अंतर ऐसा शब्द डालो बीच में, मिथ्यात्व का अंतर। हम अंतर की बात करें, ऊपर पहली लाइन आई थी देखो, मिथ्यात्व से जीवन का अंतर, तो नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है ऐसा शब्द डाला था, तो यहाँ एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का अंतर तो कितना है, तो हाँ चौथे गुण स्थान में गया और एक अंतर्मूर्त में जघन्य अंतर्मूर्त में वापस मिथ्यात्व में आया, तो उसका जघन्य अंतर कहेंगे। तो जघन्य अंतर या मिथ्यात्व का अंतर जघन्य अंतर्मूर्त काल प्रमाण है। जघन्य अंतर लिखना चाहिए था, ठीक। यह जघन्य अंतर काल, जघन्य अंतर काल ऐसा चाहिए था, वो जघन्य अंतर काल, हाँ यह जघन्य अंतर काल इस प्रकार घटित होता है कि कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव परिणामों की विशुद्धि से, विशुद्धि के निमित्त से सम्यक्त्व को प्राप्त कर असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थानवर्ती हुआ, वह चतुर्थ गुणस्थान में सबसे छोटे अंतर्मूर्त प्रमाण सम्यक्त्व के साथ रहकर संक्लेश आदि के निमित्त से गिरा और मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, अर्थात पुनः मिथ्यादृष्टि हो गया। इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थान को छोड़कर अन्य गुणस्थान को प्राप्त होकर पुनः उसी गुणस्थान में आने के पूर्व तक जो अंतर्मूर्त काल मिथ्यात्व पर्याय से विरहित रहा, यही उस जीव की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि गुणस्थान का जघन्य अंतर माना जाएगा। ये जघन्य के बाद अंतर लिखना था ना ऊपर, हाँ ये तो हो गया। ये प्रश्न चिन्ह निकाल कर वहां दंड डाल। अभी उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है, हाँ वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल किसका था, नहीं वो अर्धपुद्गल परावर्तन किसके लिए अंतर था, वो सम्यक्त्व के लिए अंतर होगा। सम्यक्त्व में से गिरकर मिथ्यात्व में आया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल रहा और फिर सम्यक्त्व में गया, वो सम्यक्त्व के लिए अंतर कह सकते हैं। अभी हमको मिथ्यात्व का अंतर देखना है, मैक्सिमम देखना है। देखो देखो पढ़े अभी, हाँ देखो देखो यहाँ पढ़े अभी। एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 अर्थात 132 सागरोपम काल है। 66 सागर सम्यक्त्व रहा एक अंतर्मूर्त के लिए, तीसरे गुणस्थान में आया, फिर 66 सागर सम्यक्त्व सहित रहा, तो इसको ये मिथ्यात्व का अंतर के, और फिर मिथ्यात्व में लौटा, ये 132 हो जाएगा सागर। हाँ फिर तो मिथ्यात्व का तो अंतर हो ही जाएगा, कुछ कम 266 वो अभी बताते ना। देखो यह उत्कृष्ट अंतर काल इस प्रकार घटित होता है, कोई एक मिथ्यादृष्टि तिर्यंच अथवा मनुष्य 14 सागरोपम आयु स्थिति वाले लांतव कापिष्ठ कल्पवासी देवों में उत्पन्न हुए, ये 14 सागर से शुरू किया, वहां एक सागरोपम काल के पश्चात सम्यक्त्व को ग्रह प्राप्त हुआ, 13 सागरोपम रहे ना, 13 सागरोपम काल वहां सम्यक्त्व के साथ रहकर च्युत हो मनुष्य हो गया। उस मनुष्य भाव में संयम को अथवा संयमासंयम को पालन कर 22 सागरोपम आयु की स्थिति वाले आरण अच्युत कल्पवासी देव में उत्पन्न हुआ। यहाँ गुणस्थान पांचवा है के चौथा है उसकी चिंता नहीं है, अभी वो मिथ्यात्व छूटकर सम्यक्त्व में आया है, तो अभी उसके 13 पहले देखा हमने, और ये कुछ अधिक में अभी मनुष्य के बहु ले लेना, साधिक नहीं वो तो हमने देशों ने कहा था उसकी बात आएगी। देखो आपका ऐसा प्रश्न है, एकेंद्रीय में जाने वाले की बात, हम मिथ्यात्व का अंतर देखते हैं, मिथ्यात्व में से जो बाहर आया है उसका, मिथ्यात्व में आने के बाद मिथ्यात्व छोड़ा और मिथ्यात्व में आया, यानी ये सादी शांत सम्यक्त की बात करो, ये जो अभी हम देख रहे हैं मिथ्यात्व छूटा है ना उसका, मिथ्यात्व गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में कितने काल तक रहकर वापस मिथ्यात्व में आएगा उसकी बात चल रही है, वो एक इंद्रियों की बात जो है असंख्यात मुद्गल परावर्तन उसकी बात यहाँ नहीं है। अनंत काल
है,
ये जो आप अर्ध पुद्गल परावर्तन की बात करते हैं वो सम्यक्त्व के विरह काल में हम देखेंगे, उसका सम्यक्त्व छूटा और वापस सम्यक्त्व में प्राप्त किया उसकी वो बात सम्यक्त्व के अंतर में देखेंगे, यहाँ हम मिथ्यात्व का अंतर देख रहे हैं। काल डिफरेंट, काल में तो उस गुणस्थान में रहने का काल है, ये अंतर यानी बीच में गैप कितना पड़ना, मिथ्यात्व में गैप कितना हुआ हा?
जैसा आप घर से बाहर निकले स्वाध्याय के लिए, हाँ स्वाध्याय के लिए निकले और फिर घर में समझ लो कि 10 बजे पहुंचने थे, 12 बजे तक नहीं पहुंचे, तो वो उतना अंतर बढ़ गया वापस घर जाने का। ऐसा यहाँ एक एक गुणस्थान की बात ली है,
देखो ये पहले 13 सागरोपम फिर 22 सागरोपम, वहाँ स्थिति वाले आरण अच्युत कल्पवासी देवों में उत्पन्न हुआ, वहाँ से च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ, इस मनुष्य भव में संयम धारण कर मरा और 31 सागरोपम की आयु वाले उपरिम ग्रैवेग के अहम इंद्रों में उत्पन्न हुआ, वहाँ से च्युत हो मनुष्य हुआ और संयम को धारण कर पुनः उक्त प्रकार से 20, 22 और 24 सागरोपम की आयु वाले देवों और अहम इंद्रों में क्रमशः उत्पन्न हुआ। अच्छा ये मैंने जो बीच में तीसरे गुणस्थान की बात की थी वो नहीं है यहाँ, वो तो क्षोभम सम्यक्त्व में लेना था, ये अलग बात की उन्होंने। ये बीच में रहना चाहिए, हाँ नीचे आएगा, हाँ इस प्रकार वो पूरे 132 सागरोपम काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर अंत में पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, इस तरह मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर सिद्ध हो गया। उक्त विवेचन में यह बात ध्यान रखने की है, वह जीव जितने बार मनुष्य हुआ उतने बार मनुष्य भव संबंधी आयु से कम ही देवायु को प्राप्त हुआ है, अन्यथा बतलाए गए काल से अधिक अंतर हो जाएगा। 66 सागर गिना है ना, तो यहाँ जो 32 सागर 22 सागरोपम जो कुछ बताया तो उसमें जो मनुष्य की किसी को पूर्व कोटि की आयु होगी कोई 100 साल का होगा, तो ये 22 सागर पूरी आयु नहीं उसने बांधी, उसमें उतने कम मनुष्य आयु से कम, क्योंकि एग्जैक्ट 66 सागर ही उसका आना चाहिए, उसमें जो बीच बीच वाली मनुष्य आयु है वो देवों की उतनी कम बांधेगा, तो मनुष्य और देव की मिलकर उसकी ये 13 सागर और ये जो सभी 22 सागर 31 सागर ये जो कुछ है मनुष्य आयु प्लस देव की आयु मिलकर उतनी होगी। अब कुछ कम 266 सागरोपम कहने का अभिप्राय यह है कि वह जीव प्रथम 66 सागरोपम काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर बीच में सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान वो क्या करना सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त करके पुनः दूसरी बार 66 सागरोपम काल तक सम्यक्त्व के साथ रहा और 266 सागरोपम काल के अंत में पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, इसलिए उतना काल उनमें से घटा दिया है। पर मिथ्यात्व के अंतर में से घटाने की जरूरत नहीं थी, वो तो मिथ्यात्व से रही थी था, ठीक है। यह ध्यान रखने की खास बात यह है कि काल प्ररूपणा में यह भी काल में और अंतर में क्या क्या है डिफरेंस देखें, जिन जिन गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल बतलाया गया है उन उन गुणस्थानवर्ती जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं होता। जहाँ जहाँ हमने कहे नाना जीवों की अपेक्षा सवद्धा उसको कहेंगे वे निरंतर गुणस्थान है, किंतु उनके सिवाय शेष सभी गुणस्थानवर्ती जीवों का नाना जीवों की तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर होता है। जैसे सासादन गुणस्थान है, नाना जीवों की अपेक्षा भी हमने देखा था काल जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्ले का संज्ञा, फिर बाद में उसमें अंतर पड़ेगा, वैसे एक जीव की अपेक्षा भी काल हमने देखा था जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह अवले, और अंतर पड़ेगा। अंतर कितना पड़ेगा भाई? उसी को अंतर कहते, वो कितना पड़ेगा मैंने पूछा, आपको मालूम है? हाँ, दो साधन एक जीव को, असंख्यात वर्ष होते हैं। देखो, एक बार प्रथमोपशम, एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त होकर जो गिर जाता है, दोबारा प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त होने का उसको, यानी सम्यक्त में से गिर कर ही सासाधन में आया, तो दोबारा सासाधन कब हो सकता है? दोबारा प्रथमोपशम कभी प्राप्त करेगा। तो एक बार प्रथमोपशम होकर छूटता है तो असंख्यात वर्षों तक तो उसको वेदक यानी क्षोपशम सम्यक्त तो हो सकता है, बीच में उसको प्रथमोपशम हो ही नहीं सकता। जो तीन टुकड़े उसने अंत कोड़ा कोड़ी के किए थे, तो उसमें से एक सागर और कुछ कम, अभी त्रसों के लिए, एकेंद्रियों के लिए अलग अलग प्रपोर्शन है, उतना बाकी रहे तो दोबारा वो उपशम कर सकता है उसका। तो उतने काल तक उसको सासाधन भी नहीं होगा उस जीव को, यानी सासाधन का अंतर कितना होगा, ये असंख्यात वर्षों का। देखो अभी हम पढ़ेंगे, एक जीव की, एक जीव की कहते तब सेम जीव लेना। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा कभी भी विरह को नहीं प्राप्त होने वाले छह गुणस्थान है, जिसको निरंतर गुणस्थान कौन कौन से अभी हमको मालूम है, कौन कौन से? मिथ्या दृष्टि, असंयत समय दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत और सहयोगी केवली। इन गुणस्थानों में केवल एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर बतलाया गया है, जिसे ग्रंथ अध्ययन से पहले पाठक भली भांति जान सकेंगे। जिस प्रकार से ओघ से अंतर का निरूपण किया गया है, उसी प्रकार आदेश की अपेक्षा भी यानी मार्गणाओं में भी अंतर बताएंगे। भी उन उन मार्गणाओं में संभव गुणस्थानों का अंतर जानना चाहिए। मार्गणाओं में आठ सांतर मार्गणाएं होती है, अर्थात जिनका अंतर होता है, जिनमें अंतर पड़ सकता है। अकेला सम्यक्त कहेंगे तो सम्यक्त में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। देखो मार्गणाओं में एक जीव की अपेक्षा अंतर पड़ेगा, उसमें तो कोई यानी बड़ी बात नहीं है। तो देखो मार्गणा में भी पड़ेगा ना, सम्यक्त में तो नहीं पड़ेगा। अभी सासाधन में पड़ेगा कि नहीं? मार्गणा की बात चल रही है,
आदेश की
बात। आदेश देखो यहाँ बताया उपशम समय,
आपका जो कहना है कि मार्गणा में अंतर पड़ेगा कि नहीं एक जीव की अपेक्षा, ऐसा पूछ रहे हैं?
नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा।
हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा
पड़ेगा ना। अब जो उपशम सम्यक तो है, या देवों में उत्पन्न होने वाले, निरंतर हर समय तो नहीं उत्पन्न होते, बीच में कुछ गैप पड़ेगा, तो उसमें वो वैकृत मिश्र वाला कायोग वगैरह ऐसे इस तरह से ले लेंगे। देखो ये उपशम सम्यक तो मार्गणा, यानी हर समय कोई ना कोई औपशमिक सम्यक्ति हो ही जाएगा, प्रत्येक समय में ऐसी बात नहीं है, उसमें भी गैप पड़ सकता है। सूक्ष्म सांप्राय संयम मार्गणा, आहारक कायोग मार्गणा, यानी निरंतर कोई ना कोई आहारक कायोग में होना ही चाहिए, ऐसे नहीं बीच में अंतर पड़ेगा उनमें। आहारक मिश्र कायोग मार्गणा, वैकृत मिश्र कायोग मार्गणा, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य गति मार्गणा, अकेले मनुष्य गति तो निरंतर होगी, परंतु ये लब्धि अपर्याप्त को में अंतर पड़ेगा। ये बातें आएगी जो, ये तो ये हम सब पढ़ने जा रहे हैं, ये तो इंट्रोडक्शन है। सासाधन सम्यक्त मार्गणा, ये आई ना बात, जैसे उपशम सम्यक्त में अंतर पड़ता है, तो उतना ही सासाधन सम्यक्त की अपेक्षा, यानी अनेक जीवों की अपेक्षा, मैंने जो बताया था वो एक जीव की अपेक्षा बताया था, नाना जीवों की अपेक्षा भी उसमें अंतर पड़ेगा। और सम्यक मिथ्यात्व मार्गणा, इन आठों का उत्कृष्ट अंतरकाल क्रमशः सात दिन उपशम सम्यक्त के बारे में, छह मास सूक्ष्म सांप्राय के बारे में, वर्ष पृथक्त्व दोनों के बारे में, आहारक का योग और आहारक मिश्र के बारे में, वर्ष पृथक्त्व वर्ष पृथक्त्व। वैकृत मिश्र में 12 मुहूर्त, यानी गैप पड़ेगा तो 12 मुहूर्त के बाद कोई ना कोई वो देवों में आदि उत्पन्न होगा। और अंतिम तीन सांतर मार्गणाओं का अंतरकाल पृथक पृथक पल्योपम का असंख्यात भाग है। सासाधन का, सम्यक मिथ्यात्व का और लब्धि अपर्याप्त मनुष्य गति मार्गणा का, ये सब डिटेल में आने वाले। ये तो यहाँ बस अपने को थोड़ा विषय का परिचय करा है। हाँ, ट्रेलर। इन सब सांतर मार्गणाओं का जघन्य अंतरकाल एक समय प्रमाण ही है सभी का, और उत्कृष्ट अभी उन्होंने बता दिया। इतना हुआ है वो इन चाहिए। इन सांतर मार्गणाओं के अतिरिक्त, अतिरिक्त नहीं, उनके अलावा इन सांतर मार्गणाओं के अतिरिक्त शेष सब मार्गणाएं नाना जीवों की अपेक्षा अंतर रहित है। यह ग्रंथ के स्वाध्याय से सरलता पूर्वक हृदयंगम किया जा सकेगा। ये तो विषय परिचय हुआ, अब अपना विषय शुरू करते हैं। जहां हमने मंगलाचरण देखा था उसी पृष्ठ पर आना है, एक नंबर के पृष्ठ पर। देखो बहुत इंटरेस्टिंग और आसान भी है, अभी यहाँ कोई गणित विनित नहीं है इसमें। अब पहला ही सूत्र पढ़ते हैं। अंतरानुगमेन दुविहो निर्देशो ओघेन आदेशेन। हरेक अनुयोग के पहला वाक्य ऐसा ही था ना, दो प्रकार का निर्देश होता है, ओग से और आदेश से। अंतरानुगम से निर्देश, निर्देश यानी कथन, दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। फिर जो हमने निक्षेप के भेद देखे थे वे यहाँ भी बताते हैं। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से अंतर छह प्रकार का होता है। उनमें बाह्य अर्थों को छोड़कर अपने आप में अर्थात स्ववाचकता में प्रवृत्त होने वाला अंतर यह शब्द नाम निक्षेप है। अंतर ऐसे उसका नाम रखा ना, ये नाम निक्षेप नाम है, वो अपने आप को बताने वाला होता है। इसलिए यहाँ क्या कहा, बाह्य अर्थों के, अन्य पदार्थों को नहीं बताता, अंतर यह शब्द वो अंतर को बताता है, ये इसका अर्थ है। अब स्थापना अंतर, नाम अंतर हमने देखा था, अंतर यह शब्द नाम अंतर होगा, यानी नाम निक्षेप की अपेक्षा। अब स्थापना अंतर यानी किसी चीज में उसके अंतर की स्थापना कर दी हमने, वो भी दो प्रकार का, सद्भाव और असद्भाव के भेद से दो प्रकार का है, जिसको तदाकार अतदाकार ऐसे भी दो नाम है। ये हमने पहले, ये प्रत्येक पुस्तक में हमने बहुत ये डिटेल में देखा है। भरत और बाहुबली के बीच उमड़ता हुआ नद सद्भावना स्थापना अंतर है। भरत बाहुबली का युद्ध छिड़ा तो दोनों के बीच में नद, ने बड़ा बड़ी नदी होती है ना, उसको नद कहते हैं। उमड़ता हुआ नद सद्भावना स्थापना अंतर है, उन दोनों का बीच में जो वो अंतर है ना। अंतर इस प्रकार की बुद्धि से संकल्प करके दंड बाण धनुष आदि असद्भावना स्थापना अंतर है, अर्थात दंड बाण आदि न होते हुए भी तत्प्रमाण क्षेत्रवर्ती अंतर की, यह अंतर इतने धनुष ऐसी जो कल्पना करते हैं कर लेते हैं उसे असद्भाव स्थापना अंतर कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमसे कितने दूरी पर बैठे है, तो हमने कहे चार धनुष दूरी पर बैठा है, तो धनुष को तो हमने नहीं लिया, परंतु धनुष को जो अंतर है, धनुष का जो साइज है, वो माप है, वो हमने बुद्धि में कल्पना करके उसको कहा इतना धनुष अंतर है, तो ये असद्भाव स्थापना अंतर कहते हैं। अभी द्रव्य निक्षेप की बात करेंगे। द्रव्यांतर आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है, यानी आगम द्रव्यांतर और नो आगम द्रव्यांतर, ये याद होगा थोड़ा थोड़ा, अभी फिर देखते हैं। द्रव्य निक्षेप कहना किसको है, कि जो भूतकालीन या भविष्यकालीन पर्याय को अभी वर्तमान द्रव्य तो वही का वही है, वो जो उपचार होता है उसको हम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। तो यहाँ अंतर संबंधी अनुयोग यानी जो आगम है उसका जानने वाला जीव परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है, वो भले व्यापार धंधा करता हो या कोई अन्य बातें करता हो। तो अंतर संबंधी ज्ञाता वर्तमान में उपयोग से रहित, उसको हम आगम द्रव्य अंतर कहेंगे। और जो वर्तमान में नहीं जानने वाला है वो अन्य जो बातें है उसको नो आगम भी कहेंगे, उसकी बात हम देखते हैं। अंतर विषयक प्रावृत के ज्ञायक, प्रावृत यानी ये जो जिनागम है, अंतर संबंधी कथन करने वाला, अभी ये जो अपनी पुस्तक है वो अंतर संबंधी प्रावृत है, उसके ज्ञायक तथा वर्तमान में अनुपयुक्त, वर्तमान में उनका उपयोग उसमें नहीं है, अन्यत्र है, ऐसे पुरुष को आगम कहूँ, अगम हुआ है, आगम द्रव्यांतर कहते हैं। अथवा अंतर के प्रतिपादक द्रव्य रूप आगम को आगम द्रव्यांतर कहते हैं। यानी ये जो अभी धवला पुस्तक पांचवा है और इसे अंतरानुगम है, इसको भी हम आगम द्रव्यांतर कहेंगे। ये आगम द्रव्यांतर इसको कहा, ये उपचार से है, जीव जो जानने वाला है उसको ही आगम द्रव्यांतर कहते हैं सच में तो। हाँ, अब नो आगम के भेद कितने कितने हैं? तो नो आगम द्रव्यांतर जो है उसके तीन भेद, ज्ञायक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त। इन भेद से तीन प्रकार का है। आधार में उपचार से प्राप्त हुई अंतर संज्ञा, जिसको ऐसा ज्ञायक शरीर, अंतर संज्ञा जिसको ऐसा ज्ञायक शरीर, क्या कहे, आगम का जानने वाला जो जीव है उसका आधारभूत जो शरीर है उसको भी यहाँ नो आगम का, क्या कहे, आधार में उपचार, आधार में उपचार किया इसके, इसलिए उसको भी अंतर कह दिया। किसको कहा, ज्ञायक शरीर को। ऐसा जो ज्ञायक शरीर है वह, अभी उसके तीन भेद, ज्ञायक शरीर, नो आगम, द्रव्य अंतर के तीन भेद, एक भव्य, वर्तमान और समुत्यक्त यानि भूतकाल का, त्यक्त है ना, त्यक्त है ने वो छोड़ के आया है, कौन सा शरीर छोड़ के आया है, यानी जो वर्तमान का ज्ञाता जीव है उसका जो अभी का जो शरीर है उसको वर्तमान ज्ञायक शरीर, नो आगम, द्रव्यांतर कहेंगे। उसी जीव को अगले भव में जो शरीर धारण करेगा उसको भी भव्य, ज्ञायक शरीर, नो आगम, द्रव्यांतर कहेंगे। और वो जो पिछले भव में जो उसने शरीर छोड़ा है हाँ, उसको भी त्यक्त का, यहाँ समुत्यक्त का, उसको भूत भी कह सकते हैं। हाँ, वो समित्यक्त, ज्ञायक शरीर, नो आगम, द्रव्यांतर कहेंगे उसको। ये ज्ञायक शरीर के ही तीन भेद हो गए। ज्ञायक शरीर यानी ज्ञायक जिस शरीर में रहता है या रहेगा या रहा था, उस शरीर को भी यहाँ उपचार से वो संज्ञा दे दी। शंका, अनाधार से स्थित अर्थात वर्तमान में जो अंतर आगम का आधार नहीं है, ऐसे भावी शरीर के अंतर इस संज्ञा का व्यवहार कैसे हो सकता है? ये सब व्यवहार ही चल रहा है। तो कहते हैं वर्तमान में तो ज्ञाता है और भविष्य में जो शरीर वो धारण करेगा वो तो अभी इस जीव का तो आधार है ही नहीं है, तो उसको भी आप ये नो आगम द्रव्यांतर कैसे कह सकते हो? भव्य वाला जो भेद है ना, यानी भविष्य काल में जो यह जीव जो धारण करेगा, शरीर धारण करेगा उसको। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि कूर रूप यानी भात रूप पर्याय के आधार न होने पर भी तंदुलों में अर्थात व्यवहार में कूर संज्ञा पाई जाती, उसको भी भात कहते हैं। भात तो पकने पर कहते हैं, चावल पकने पर उसको भात कहते हैं, तो वो चावलों को भी भात कहने में आता है, ये भात की खेती है, इसे भी कहते हैं। शंका, भूत ज्ञायक शरीर के यह अंतर को व्यवहार कैसे बनेगा? तो भूत ज्ञायक शरीर में यह व्यवहार कैसे होगा जो भविष्य में धारण करना है, उसकी तो बात की थी, अब भूतकाल के शरीर में क्यों? तो कहते नहीं, क्योंकि राज्य पर्याय के नहीं धारण करने वाले पुरुषों में भी राजा आता है इस प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। जो युवराज है, राजा का पुत्र है, उसको भी राजा कहने में आता है, वो तो अभी है ही नहीं राजा। वैसे ही यहाँ भी उपचार हो सकता है। अब भव्य नवागम द्रव्यांतर की बात करेंगे। देखो अभी तक हमने कौन कौन से द्रव्यांतर देखे, भव्य ने भावी, पहले दो भेद किए थे हमने, द्रव्यांतर के दो भेद किए, यानी ये द्रव्य निक्षेप दो प्रकार का है, आगम और नो आगम। आगम में हमने यानी ये शास्त्र को भी उपचार से आगम द्रव्यांतर कह दिया, परंतु सच्चा आगम द्रव्यांतर जीव को कहेंगे। कौन सा जीव? कि जो वर्तमान में आगम को जानता है परंतु उपयोग से रहित है। अब उस वहाँ आगम द्रव्यांतर के वो भेद कर दिया। अब नो आगम में किसको लेना है? एक ज्ञायक शरीर, एक भव्य या भावी, और एक तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर में हमने तीन भेद किए थे, यानी शरीर के तीन प्रकार, एक भूतकाल का, एक वर्तमान का और एक भविष्य का। ये जो भव्य वाला दूसरा नो आगम का भेद है, वो जीव लेना, कि जो जीव अभी तो जान नहीं रहा है और ये भविष्य काल में डेफिनेट जानने वाला है। अभी तो हम ये अंतरानुगम को नहीं जान रहे, परंतु अभी हम जानने जा रहे हैं, तो ये भावी नो आगम द्रव्य अंतर। और तद व्यतिरिक्त में इनके अलावा जो कुछ है, विकर्मादि जो कुछ ले लेंगे उसमें देखते हैं। तो भविष्य काल में जो अंतर शास्त्र का ज्ञायक होगा, परंतु वर्तमान में अन्य पदार्थ के उपयोग को होते हुए भी अंतर शास्त्र के ज्ञान से रहित है, परंतु भविष्य में ज्ञाता होगा, ऐसा लिखा ना उसमें। वर्तमान में तो वो जान नहीं रहा, परंतु भविष्य में जानने वाला है, ऐसे पुरुष को भव्य नो आगम द्रव्यांतर कहते हैं। यहाँ भव्य ने भविष्य काल वाला, वो भव्य होने योग्य, उसको भव्य कहा है। ये भव्यत्व अभव्यत्व वाली की बात नहीं चल रही। अब तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर, यानी इनके अलावा, तद व्यतिरिक्त यानी इन दोनों के अलावा, जो शरीर भी नहीं है, जो जीव भी नहीं है, इनके अलावा क्या हो सकता है? तो ये जो अभी नो आगम द्रव्यांतर है वो कौन कौन है? सचित्त, अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है। उसमें भी तीन भेद किए, सचित्त, अचित्त और मिश्र। उनमें से वृषभ जिन और संभव जिन के मध्य में स्थित अजित जिन सचित्त तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर के उदाहरण है। पहले और तीसरे, उनके बीच में वो जो दूसरे तीर्थंकर हैं। अब घनो दधि और तनुवात के मध्य में स्थित घनवात अचित्त तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर है। ये दोनों को बीच में जो स्थित है उसको कहेंगे अभी घनो दधि। ये वात वाले है ना, हमको मालूम है, घनो दधि, घनवात और तनुवात। अब उर्जयंत और शत्रुंजय के मध्य में स्थित ग्राम नगरादिक मिश्र तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर है। ग्राम और नगर इसको कहते हैं मिश्र। ये उर्जयंत क्या है? हाँ भाई मालूम है, शत्रुंजय मालूम है, पालीठाना पर्वत है ना, तो उर्जयंत भी कोई पर्वत होगा। हाँ गिरनार को उर्जयंत कहते हैं। तो गिरनार और शत्रुंजय के बीच में जो ग्राम नगरादिक है उनको मिश्र तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर कहेंगे। क्षेत्रांतर और कालांतर ये दोनों ही द्रव्यांतर में प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि छह द्रव्यों से व्यतिरिक्त क्षेत्र और काल का अभाव है। ये क्षेत्रांतर कालांतर भी उसी में गर्भित है। अब भावांतर नो आगम कहेंगे। ये द्रव्यांतर की हमने डिटेल देखे, आगम द्रव्यांतर, नो आगम द्रव्यांतर। अब भावांतर और द्रव्यांतर में क्या डिफरेंस है? तो द्रव्यांतर में वर्तमान पर्याय उसमें उपयुक्त नहीं है, भावांतर में वर्तमान पर्याय सहित वाला लेना है, तो उसमें भी आगम नो आगम दो भेद करेंगे। भावागम में दे, भावांतर आगम में देखो, भावांतर आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है, यानी आगम भावांतर और नो आगम भावांतर। अंतर शास्त्र के ज्ञायक और उपयुक्त, यानी उसी में उपयोग चल रहा है, ऐसे पुरुष को आगम भावांतर कहते हैं। अथवा भाव रूप अंतरागम को आगम भावांतर कहते हैं। औदयिक आदि पांच भावों में से किन्हीं दो भावों के मध्य में स्थित विवक्षित भाव को नो आगम भावांतर कहते हैं। यहाँ भाव यानी भाव लिए, वो पांच भावों में से जो भाव है ना उसके, तो दो भावों के बीच में जो कोई मध्य तीसरा जो भाव है उसको भावांतर कहते हैं, नो आगम भावांतर। अब शंकाकार पूछता है, आपने इतनी लंबी चौड़ी बता दी लिस्ट, यहाँ पर कौन सा प्रयोजन है, यहाँ पर किस प्रकार के अंतर से प्रयोजन है? समाधान, नो आगम भावांतर से प्रयोजन है। उसमें भी अजीव भावांतर को छोड़कर जीव भावांतर प्रकृत है, क्योंकि यहाँ पर अजीव भावांतर से कोई प्रयोजन नहीं है। जीव के भावों में जो कुछ गुणस्थानों में मार्गणाओं में जो अंतर पड़ता है उसकी बात यहाँ चल रही है। अब उसके एकार्थवाची नाम बताएंगे। अंतर को ही जो पर्यायवाची नाम होते हैं ना, पर्यायवाची ने एकार्थवाची, वैसे उसी अर्थ में जो हम दूसरा शब्द वहां रख सकते हैं अंतर के बदले, वो कौन कौन से हैं? अंतर, उच्छेद, विरह, परिमाणांतर गमन, परिणामांतर गरम गमन। परिणाम यानी उसके जीव के परिणाम भाव, परिणाम अंतर गमन, अन्य परिणामों को प्राप्त होना है ना, नास्तित्व गमन, अन्य भाव व्यवधान, ये सब एकार्थवाची नाम है। उसमें व्यवधान आया, उसमें गैप पड़ गया, अपने और एक भाग गैप ये शब्द भी जोड़ दो चलेगा समझने के लिए, हो वहां नहीं निकला। इस प्रकार के अंतर के अनुगम को अंतरानुगम कहते हैं। उस अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, निर्देश यानी कथन, क्योंकि वह निर्देश द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने वाला है। द्रव्यार्थिक यानी सामान्य कथन होगा और पर्यायार्थिक यानी उसके जो मार्गणाओं के बारे में, उसको हम पर्यायार्थिक नय कहेंगे। तीन प्रकार का निर्देश क्यों नहीं होता? नहीं, क्योंकि तीसरे प्रकार का कोई नय ही नहीं है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो ही नहीं, एक तो सामान्य से कथन होगा या उसमें विशेषता से कथन होगा। यह भी कैसे जाना? क्योंकि संग्रह यानी सामान्य और असंग्रह यानी विशेष को छोड़ करके किसी अन्य नय का विषयभूत कोई पदार्थ नहीं पाया जाता। या तो सामान्य से उसको कथन करो या विशेष से, इसके अलावा और कोई उसमें है ही नहीं है। इस उक्त प्रकार के शंका समाधान को मन में धारण करके सूत्रकार ने ओघ से और आदेश से ऐसा पद कहा है। दूसरी भाषा में द्रव्यार्थिक नय से और पर्यायार्थिक नय से कहो तो भी चले, या सामान्य से और विशेष से कहो तो भी चले। फिर शंका, एक ही निर्देश करना पर्याप्त था? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि एक निर्देश से दोनों नयों के अवलंबन करने वाले जीवों के उपकार करने में उपाय का अभाव है। क्या कहते हैं? एक ही कथन से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों का कथन नहीं हो सकता, तो दोनों नयों के अवलंबन करने वाले शिष्य, अवलंबन किसको होगा? ये तो ये अवलंबन, नयों का अवलंबन किसको होगा? सम्यक दृष्टि को। तो ये जो शिष्य है, पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करना कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं, उसमें द्योतक नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को ना ही निश्चय नहीं या ना ही द्रव्यार्थिक नय का पता है, ना ही पर्यायार्थिक नय का पता है। उसका अवलंबन करने वाले जो शिष्य है, ये जो सातवें भाग में बात है ना, निश्चयाभासी और व्यवहारभासी, उसमें उसने गलत, उसका अर्थ अपनी बुद्धि से गलत अर्थ कर लिया है। आभास है उसको निश्चय का, और व्यवहार का भी आभास है। यहाँ तो सच्चा ज्ञान है द्रव्यार्थिक नय का और व्यवहार पर्यायार्थिक नय का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में था निश्चयभासी व्यवहारभासी, तो कहीं अगर निश्चय का अवलंबन करने वाले निश्चय नयावलंबी कहेंगे तो ऐसा किसी को लगता है अरे ये तो मिथ्यात्व का कोई भेद होगा, ऐसा नहीं है। आभास ये मिथ्यात्व की पर्याय। देखो ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवा अधिकार है, तो उसमें मिथ्यात्व के ही अलग अलग प्रकार बताए कि जो जिनागम का ज्ञान है, जैन आगम का, शास्त्रों का अभ्यास कर रहा है, और फिर भी कहीं उसके अभिप्राय में कहां भूल हो जाती है, या अभिप्राय में उसकी भूल है, अभी श्रद्धा के साथ ज्ञान भी उसका खोटा जल रहा है।
देखो बात ऐसी है कि आप जरा गौर से चौथा अधिकार देखेंगे तो उसमें लिखा है, यहाँ है तो मिथ्यात्व का अधिकार लेकिन वहाँ ज्ञान की प्रधानता से बात कही गई है, और यहाँ भी सातवां भी अधिकार मिथ्यात्व का ही है लेकिन वो जैन मिथ्यात्व है और इन जनरल मिथ्यात्व चौथा अधिकार है। तो वहां तो बताएंगे ज्ञान के माध्यम से ही, क्योंकि
समझाएंगे तो ज्ञान की
खोटा जान रहे हो इसलिए खोटी मान्यता कर रहे हो, इस अपेक्षा से ज्ञान के माध्यम से दर्शन की भी बात बताई है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो चरित्र की भी बात ज्ञान के माध्यम से ही बताते हैं। नहीं आभास यानी
हाँ देखो, हम उसकी जो मान्यता हमारे ख्याल में आ रही है, आपका प्रश्न ऐसा है कोई जो निश्चयाभासी है ये हम कैसे कह सकते हैं, तो निश्चय नय का जो कथन है मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ वगैरह वगैरह, वो उसने पर्याय में भी अपने को ऐसा ही मान लिया, हाँ मानवा माही, ये तो मान्यता का ही दोष है। हाँ परंतु उसकी मान्यता उसके आचरण से उसके बिहेवियर से उसके बोलने से अपने ख्याल में आ रहा है, वो तो क्या कहता है मैं तो केवल ज्ञानी हूँ जो केवल ज्ञान स्वरूप
मैं राग से भिन्न हूँ ऐसा करके रागी द्वेषी सारे परिणाम,
यानी मैं रागी नहीं हूँ ऐसा मानता है, यानी भले वो
ये तो पुद्गल का है मेरा कुछ नहीं है, यानी आप जो कह रहे हैं कि वो ज्ञान का भी दोष है और मान्यता का भी दोष है दोनों साथ में है, बताया गया है ज्ञान के माध्यम से,
उसने शास्त्र तो पढ़े है निश्चय नय का कथन तो सुना है और वो अपने को पूरा का पूरा वैसे नए का कथन उसने पूरे द्रव्य पर घटित किया, पर्याय में भी मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानता है, अरे मैं तो राग से भिन्न वो मेरा कोई बंधन ही नहीं है ऐसा, यानी उसके वो तो भ्रम हो गया, उसको शास्त्र का सही अर्थ पकड़ा नहीं है। अब यहाँ से अपना प्रकरण शुरू हो जाता है, यानी अलग अलग गुण स्थानों का अंतर बताएंगे। ओघे न मिच्छा दिठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होंती नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। ओग से मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है तो उसकी कहते हैं उसको निरंतर है, यानी मिथ्या तो गुणस्थान जो है नाना जीवों की अपेक्षा निरंतर गुणस्थान है, जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है, इस न्याय के रक्षणार्थ ओघ से यह पद कहा। अब ये सूत्र में एक एक शब्द क्यों लिखा, ओघे ना ऐसा शब्द क्यों लिखा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ओघ का कथन करने का, इसलिए ओघे ना लिखा, जैसा उद्देश्य है वैसा निर्देश यानी कथन होता है, यानी हम जो बताना चाहते हैं वैसा ही वहां कथन होगा, इसलिए ओघे ना शब्द लिखा। मिथ्या दृष्टि का पद का निर्देश शेष गुणस्थानों के प्रतिषेध के लिए है, मिथ्या दृष्टि नम अंतरम लिखा ना तो मिथ्या दृष्टि शब्द क्यों डाला, क्योंकि अन्य गुणस्थानों की यहाँ बात नहीं हो रहे, एक मिथ्या तो गुणस्थान की बात हो रही। कितने काल होता है इस पृच्छा का फल, इस सूत्र की प्रमाणता का प्रतिपादन करना है, केवचिरम कालादो होदी ये जो इस सब पूछा है तो प्रश्न क्यों पूछा, डायरेक्ट बताते कि निरंतर है, तो कहते प्रश्न पूछा और सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उसका उत्तर आया है, ये सूत्र की प्रमाणता बताता है, इसलिए प्रश्न पूछकर उसका उत्तर बताया है। इसका हमने बार बार हर अध्याय ने हर एक अनुगम में इसकी चर्चा हुई थी। शंका, नाना जीवम इस प्रकार का एक वचन का निर्देश बहुत से जीवों में कैसे घटित होता है, हाँ ये वही प्रश्न, नाना जीव कहकर एक ही जीवम कहा, अधिक जीव क्यों नहीं कहा, तो ये पूरी एक जाति बताई नहीं उन्होंने, नाना जीवों में स्थित सामान्य की विवक्षा से बहुतों के लिए भी एक वचन प्रयोग में विरोध नहीं आता, जैसे हम जीव कह देते हैं तो जीव तो अनेक है फिर भी एक वचन कह के पूरी जीव जाति बताई जाती है, वैसे यहाँ नाना जीव कहकर उसमें जो मिथ्यात्व की समानता है उस अपेक्षा से उसको एक वचन में यहाँ प्रयोग किया है। अब ऊपर लिखा नाना जीवम पड़ुचन अथ्य अंतरम यानी निरंतरम, अंतर नहीं है लिखा ना, अंतर नहीं है, अर्थात मिथ्यात्व पर्याय से परिणत जीवों का तीनों कालों में विच्छेद, विरह या अभाव नहीं होता, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए। अंतर के प्रतिषेध करने पर वह प्रतिषेध तुच्छ अभाव रूप नहीं होता है, किंतु भावांतर भाव रूप होता है। यहाँ क्या कहना चाहते, जब मिथ्यात्व का अंतर कहेंगे तो उसका अर्थ अन्य भाव रूप परिणमित हुआ है, अंतर पड़ा है ना, उसका पूर्ण रूप से अभाव हुआ ऐसा नहीं है, वो जीव का अभाव नहीं हुआ है, वो अन्य भाव को चला गया। जब हम कहेंगे यह देशांतर को गया है तो कहीं नहीं है ऐसा उसका अर्थ होता है, हाँ दूसरी जगह है, वो दूसरे भाव में उसका चल रहा है, उसका दूसरा भाव चल रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, भावांतर भाव रूप होता है, भाव रूप है वो, ये अन्य भाव के भाव रूप है। भावांतर यानी अन्य भाव, अन्य भाव यानी अस्थि है उसकी, वहां विशिष्ट मिथ्यात्व पर्याय अभी नहीं है परंतु अन्य पर्याय की अस्थि है। मिथ्यात्व पर्याय का अभाव है परंतु सम्यक्त्व पर्याय का सद्भाव है, तो अन्य भावांतर रूप भाव है। इस बात के जतलाने के लिए यानी बताने के लिए निरंतर पद का ग्रहण किया है। प्रतिषेध से व्यतिरिक्त होने के कारण विधि रूप से मिथ्यादृष्टि जीव सदाकाल रहते हैं, यह अर्थ कहा गया है। प्रतिषेध यानी निषेध, उसके व्यतिरिक्त यानी उसके विरुद्ध या उसके अलावा, विधि रूप, विधि यानी विधि और निषेध, ऐसे दो कथन पद्धति, विधि यानी अस्थि बताना, निषेध यानी उसके नास्ति बताना, मिथ्यादृष्टि जीव सर्वकाल रहते हैं, यह अर्थ कहा गया है। देखो यहाँ क्या है, अंतर नहीं है यानी हमेशा है, अथवा पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन करने वाले जीवों के अनुग्रह के लिए अंतर नहीं है, इस प्रकार प्रतिषेध वचन, और द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन करने वाले जीवों के अनुग्रह करने के लिए निरंतर इस प्रकार का विधिपरक वचन कहा गया है। देखो निरंतर है, निरंतर है, निरंतर है, सदा सर्वदा है, और अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है, हाँ अस्सी नास्ती से कथन है। इसको कहते हैं निरंतर है, ये विधि परक हुआ, अंतर नहीं है, ये निषेध परक हुआ। यह आगे के सभी सूत्रों में भी कहना चाहिए, यानी जब जब ये बात आएगी तब ऐसा ही समझना, ये पहले ही एक बार उन्होंने बता दिया। अब ये तो नाना जीवों की अपेक्षा निरंतर है यह बता दिया, अब एक जीव की अपेक्षा कहेंगे, एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतो चाहिए, अतो हुआ है, अंतो मुहूर्तम, नीचे अर्थ कहा है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल, अंतर मुहूर्त है। ये मिथ्यात्व की बात चल रही है, उसकी कंटिन्यूटी यानी अनुवृत्ति समझ लेना। जैसे एक मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयम में बहुत बार परिवर्तित होता हुआ परिणामों के निमित्त से सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और वहां पर सर्व लघु अंतर्मूर्त काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी बहुत बार जो पहले गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में गया है वो फिर गया और जल्दी ही वापस लौटा, इस प्रकार से सर्व जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतर प्राप्त होता है। अब यहाँ काल की बात नहीं है, ये पहले काल की बात अभी भूल जाओ, अब यहाँ अंतर की बात चल रही है। मिथ्यात्व का जघन्य काल में अन्य गुणस्थान से मिथ्यात्व में आकर वापस ऊपर चला गया सम्यक्त्व में, वो काल कहा था, अब यहाँ अंतर घटित करे, मिथ्यात्व में था, सम्यक्त्व प्राप्त किया और फिर वापस मिथ्यात्व में आ गया, ये मिथ्यात्व का अंतर चल रहा है। शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि अंतर करने के पूर्व जो पहले का मिथ्यात्व था वही पुनः सम्यक्त्व के उत्तर काल में नहीं होता है, क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्ति के पूर्व काल में वर्तमान मिथ्यात्व के उत्तर काल में अर्थात सम्यक्त्व छोड़ने के पश्चात प्रवृत्ति होने का विरोध है। तथा वही पहला मिथ्यात्व उत्तर काल में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उत्पन्न हुई वस्तु के पुनः उत्पन्न होने का विरोध है। इसलिए ये पूरी शंका चल रही है। सम्यक तो छूटने के पश्चात होने वाला अंतिम अर्थात दूसरा मिथ्यात्व पहले का मिथ्यात्व नहीं हो सकता है, इससे अंतर का अभाव ही सिद्ध होता है। ये अंतर के अभाव ही कहता है, क्योंकि जो पर्याय पहली थी वो तो दोबारा नहीं आ रही है सके थे। वही पर्याय नहीं, पर्याय तो एक एक समय की है, और जो सम्यक तो प्राप्त होने वाले पहले जो मिथ्यात्व था और अभी सम्यक तो छूटकर जो मिथ्यात्व हुआ है वो वही का वही नहीं है, दूसरा ही है, इसलिए अंतर ही नहीं हो सकता, ऐसा उसका कहना है। अब उसका समाधान, यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। उक्त कथन सत्य ही है यदि शुद्ध पर्यायार्थिक नय का अवलंबन किया जाए। पर्याय एक एक समय की देखेंगे तो ये तो बात बराबर ही है, किंतु नयगम नय का अवलंबन लेकर अंतर प्ररूपणा की जा रही है, यानी हम द्रव्य की पर्याय, वही द्रव्य है तो द्रव्य की अपेक्षा यहाँ पर्याय की बात कर रहे हैं। नयगम में दोनों को है, दोनों को लेता है, न एकम नयगम में दोनों को एक साथ हम देख रहे हैं, क्योंकि वह नयगम नय सामान्य तथा विषय विशेष इन दोनों को विषय करता है। हम कहते हैं ना भूत नयगम में नय, भविष्य नयगम नय, अभी जो श्रेणी का जीव, श्रेणी के राजा का जीव प्रथम नरक में, तो उसको हम कभी नारकी कहकर नहीं पूछते, उनको हम तो श्रेणी के राजा कहते हैं। ये नयगम नय जीव वही का वही है, और पर्याय पूर्व की भी उसके साथ जोड़ रहे हैं हम, ये दोनों को। गई है, पर यहाँ पर्याय फिर वैसी पर्याय आई ना, मिथ्यात्व की पर्याय आई है, इसलिए नयगम नय कहा यहाँ, सामान्य विशेष दोनों को बताने वाला है। उसका स्पष्टीकरण भी कहते, देखो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अंतर काल के पहले का मिथ्यात्व और पीछे का मिथ्यात्व ये दोनों पर्याय हैं, जो कि अभिन्न है, क्योंकि ये किस अपेक्षा से अभिन्न कहा, मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण एक में उसमें कारण इन्हें निमित्त की अपेक्षा बताई, दोनों का निमित्त एक ही है कि मिथ्यात्व कर्म का उदय है। दूसरी बात क्या है, आप्त आगम और पदार्थों के अश्रद्धा की अपेक्षा, उसकी अपेक्षा भी दोनों समान है, दोनों ही जो पर्याय है वो आप्त आगम और पदार्थों के अश्रद्धा ने, तथा एक ही जीव द्रव्य के आधार होने से एक ही जीव द्रव्य उन दोनों पर्यायों का आधार है, पहले वाला मिथ्यात्व और बाद वाला मिथ्यात्व, आधार भी दोनों का एक है, इसलिए उनमें कोई भेद नहीं है। ये भेद नहीं है उसका कथन हुआ। अब कुछ भेद भी है तो भेद भी हुए, सर्वथा तो अभेद नहीं है। अब भेद की अपेक्षा कहेंगे, और न पूर्व काल तथा उत्तर काल के भेद की अपेक्षा भी उन दोनों पर्याय में भेद है, क्योंकि इस काल भेद की यहाँ विवक्षा नहीं की है। हमारी जो विवक्षा है, जो अपेक्षा है, उससे कथन चलेगा, तो यहाँ काल भेद की भी विवक्षा नहीं हो रही है, इसलिए अंतर के पहले और सामान्य द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन से संग्रह को प्राप्त मिथ्यात्व का सम्यक तो पर्याय अंतर होता है, यह सिद्ध हुआ। यानी मिथ्यात्व पर्याय में जो बीच में सम्यक तो पर्याय हुई ना, वो सम्यक तो पर्याय होना ही मिथ्यात्व का अंतर है बीच में। अगर ये वापस मिथ्यात्व को नहीं लौटता तो उस जीव को हम नहीं कहेंगे, उसके मिथ्यात्व में कोई अंतर नहीं है, पहले मिथ्यात्व था, अंत हो गया, सम्यक तो प्राप्त किया और मोक्ष चला गया, ऐसा भी जीव होगा ना कोई, उसका जरूरी नहीं कि मिथ्यात्व में आवे, क्यों? तो ये बात करें, यही अर्थ आगे सर्वत्र योजित कर लेना चाहिए। अब उत्कृष्ट काल कहेंगे, उक्कसेन बेछावट्ठी सागरोवमाणी देसुनानी। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागरोपम काल है, जो अभी हमने विषय परिचय में देखा था, यही बात, एक जीव की अपेक्षा ये चल रहे हैं। ये जो अभी जघन्य भी अंतर्मुहूर्त एक जीव की अपेक्षा देखा था, ये उत्कृष्ट काल भी एक जीव की अपेक्षा देख रहे हैं। इसका दृष्टांत अभी जो हमने पढ़ा है, इसी में से उन्होंने विषय परिचय में लिखा था। फिर यहाँ दोबारा पढ़ते, कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य 14 सागरोपम आयु स्थिति वाले लांतव कापिष्ट कल्पवासी देवों में उत्पन्न हुआ। वहां एक सागरोपम काल बिताकर दूसरे सागरोपम के आदि समय में सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। 13 सागरोपम काल वहां पर रहकर सम्यक्त्व के साथ ही च्युत हुआ और मनुष्य हो गया। उस मनुष्य भव में संयम को अथवा संयमासंयम को अनुपालन कर इस मनुष्य भव संबंधी आयु से कम 22 सागरोपम, ये कम डाला ना उसमें, क्योंकि टोटल 22 सागरोपम आनी चाहिए। तो कहाँ उत्पन्न हुआ? जितनी मनुष्य आयु थी उससे कम 22 सागरोपम, इतनी आयु उसने बांधी। सागरोपम आयु की स्थिति वाले आरण अच्युत कल्प के देवों में उत्पन्न हुआ, आरण अच्युत में गया, वहां से च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ। इस मनुष्य भव में संयम को अनुपालन कर उपरिम ग्रेवेक में मनुष्य हुआ। वहां भी कितना होगा उसका? 31 सागर में वो मनुष्य भव की आयु कम करना, उतनी आयु उसने बांधी। उपरिम ग्रेवेक में मनुष्य आयु से कम 31 सागरोपम आयु की स्थिति वाले अहमिंद्र देवों में उत्पन्न हुआ। वहां अंतर्मुहूर्त कम 66 सागरोपम काल के चरम समय में परिणामों के निमित्त से सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। वहां अंतर्मुहूर्त कम 66 सागरोपम, यानी पहला उसने वो जो सम्यक तो प्राप्ति का अंतर्मुहूर्त उसमें से कम किया है। अंतर, हाँ, हू के ऊपर रफा रहे ना, वो मुंह के ऊपर चाहिए। अंतर्मुहूर्त उस सम्यक मिथ्यात्व में क्या हुआ? उस अंतर्मुहूर्त में, उस सम्यक मिथ्यात्व में अंतर्मुहूर्त काल रहकर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त होकर विश्राम ले च्युत हो मनुष्य हो गया। उस मनुष्य भव में संयम को अथवा संयमासंयम को परिपालन कर इस मनुष्य भव संबंधी आयु से कम चाहिए काम हुआ है। आयु से कम 20 सागरोपम आयु की स्थिति वाले आनत प्राणत कल्पों के देवों में उत्पन्न होकर पुनः यथाक्रम से मनुष्य आयु से कम 22 और 24 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर अंतर्मुहूर्त कम 266 सागरोपम काल के अंतिम समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। ये सब भटक कर फिर मिथ्यात्व में आ गया। इतने काल तक संयम है, मनुष्य भव है, सम्यक तो चालू है, फिर भी इस प्रकार से अंतर्मुहूर्त कम 266 सागरोपम काल प्रमाण अंतर प्राप्त हुआ। यह पूर्व में बताया गया उत्पत्ति का क्रम अव्युत्पन्न जनों के समझाने के लिए कहा है, यानी जो कुछ जानते नहीं है उसके लिए है। ये नया एक मिल गया शब्द। परमार्थ से तो जिस किसी भी प्रकार से 266 सागरोपम काल पूर्ण करना चाहिए। ये अन्य अन्य कॉम्बिनेशन आप लगा लेना, कहते हैं हो सकता है। हाँ, 66 सागर इज मैक्सिमम। वो 66 सागर में तो आप 33 सागर वाला लेना कि नहीं लेना बीच में? वो तो चले जाएगी मोक्ष में अगले भाव में, ख्याल है ना। तो किसको लेना, तो ये ग्रेविक तक क्यों लेना? उसमें भी नीचे के ऊपर के कोई स्वर्गों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं उसमें। 66 सागर की बात करने, अभी अगला सूत्र। शासन सम्मादिट्ठि सम्मामिच्छादिट्ठिणम् अंतरम केवचिरम कालादो होदि नानाजीवम पडुच्च जहन्नेन एक समयम। सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय होता है। यह अंतर पड़ा है, सभी के सभी जीव नीचे के गुणस्थान में चले गए और वो गुणस्थान में कोई भी जीव नहीं है, ऐसा मिनिमम एक समय हो सकता है। अधिक से अधिक वो भी बताएंगे। जैसे पहले सासाधन समय दृष्टि का अंतर कहते, दोनों की एक साथ बात की ना, अब एक एक जीव की बात करेंगे। दो करना, वो दऊ हुआ है। नाना जीवम पड़ुच कहा, दो जीव मादिम, हाँ हाँ जीवों का करना बराबर है। ना बेचारों ने इतनी मेहनत की है, बहुत पूरी आयु लगाई है इसके पीछे। यदि ये इंट्रोडक्शन हर एक काम पढ़ेंगे तो कैसी कैसी स्थितियों में उन्होंने ये काम किया है वो पता चलेगा। ना ही कोई वहाँ पैसे थे कोई, और इन्होंने जितनी मेहनत की है जीवों ने इसके पीछे। हाँ विरोध बहुत था, ये धवला छपाने के लिए विरोध था, ये आम जनता के लिए नहीं हो सकता ऐसा कहते थे। जनता क्या है, तो सभी मुनियों के लिए भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, वो तो बस वहीं पर थे विराजमान। ये सभी के जो पहले भाग से भी सब, जो हर एक भाग में क्या क्या संकट आए या क्या क्या उन्होंने उसमें की है, कितने तो मर गए फिर दूसरे लोगों ने वो कार्य संभाला है, इस तरह से पूरे भाग। हम तो इतने भाग्यवान हैं कि हमारे हाथ में आ गए, तो हमको उतना भी पढ़ने के लिए या शुद्धि करने के लिए समय नहीं, शुद्धि करने के लिए। देखो दो जीवों को आदि करके एक एक अधिक के क्रम से पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र विकल्प से उपशम समय दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्व के काल में एक समय को आदि करके अधिक से छह अवली काल के अवशेष रह जाने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुए। जितना काल अवशेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व को छोड़ा था उतने ही काल प्रमाण सासाधन गुणस्थान में रहकर वे सब जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। क्या कहते हैं, जो जो पहले समय में जिसका छूटा वो एक समय में मिथ्यात्व को जाता है, जिसको छह अवली पहले छोड़ा है उसके छह अवली बाद वो मिथ्यात्व में जाता है, यानी उसका सासाधन का अपना पूरा काल करके वो मिथ्यात्व में चला जाता है। और तीनों ही लोकों में सासाधन सम्यक दृष्टियों का एक समय के लिए अभाव हो गया। जितने आ गए वो सब अपने अपने क्रम से गए, परंतु ऐसा हो जाता है अभी कोई है नहीं, कोई आया भी नहीं है और उस गुणस्थान में कोई अभी है नहीं शेष। पुनः द्वितीय समय में वो मे का वो मात्रा उसकी नहीं आई, अन्य सात आठ जीव अथवा आवली के असंख्यात भाग मात्र जीव अथवा पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण उपशम समय दृष्टि जीव सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार सासाधन गुणस्थान का एक समय रूप जघन्य अंतर प्राप्त हुआ। नाना जीवों की अपेक्षा कह रहे हैं, अब उत्कृष्ट अंतर भी बताएंगे। अब उसके पहले उत्कृष्ट अंतर पहले के बदले सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर कह रहे हैं, वो घटित करके दिखा रहे हैं। सात आठ जन अथवा बहुत से सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव नाना जीवगत सम्यक मिथ्यात्व संबंधी काल के क्षय से, यानी अपना अपना काल प्रत्येक जो, क्योंकि अलग अलग समयों में वो आते रहे, अपना अपना काल पूरा होकर कोई पहले में जाएगा कोई चौथे में जाएगा, काल के क्षय से सम्यक्त्व को अथवा मिथ्यात्व को सभी के सभी प्राप्त हुए। और तीनों ही लोकों में सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव एक समय के लिए अभाव रूप हो गए। पुनः अनंतर समय में ही मिथ्या दृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि सात आठ जीव अथवा बहुत से जीव सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, यानी एक समय के लिए कोई भी जीव तीनों लोक में कोई भी जीव सम्यक मिथ्यात्व में नहीं था, अगले समय में फिर आना शुरू हुआ उसमें, तो यह एक समय का अंतर पड़ा, यह मिनिमम अंतर जघन्य अंतर है। इस प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व का एक समय रूप जघन्य अंतर प्राप्त हो गया। अब दोनों ही गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर बताएंगे, यानी कोई भी जीव उन दोनों गुणस्थान में नहीं है, ऐसा कितने लंबे समय तक हो सकता है? तो कहते उक्कसेन पलिदो वमस्स असंख्येज यदि भागो, दोनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लोपम का असंख्यातवा भाग है। उनमें पहले सासादन सम्यक दृष्टि का उदाहरण कहते हैं, सात आठ जनत्वा बहुत से उपशम सम्यक दृष्टि जीव सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुए। उन सासादन सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा आय और व्यय के क्रमवश, आय और व्यय ने आने वाले और उसमें से जाने वाले पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र काल तक सासादन गुणस्थान का प्रवाह अविच्छिन्न चला, जिसको हम काल कहते हैं। सासादन का नाना जीवों की अपेक्षा काल भी हमने पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण देखा था, इसको कहते अविच्छिन्न धारा रूप से चला। पुनः उसका काल समाप्त होने पर दूसरे समय में ही वे सभी जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हुए और पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र काल तक के लिए सासादन गुणस्थान अंतर को प्राप्त हो गया, यानी उसमें कोई भी जीव नहीं है। ऐसा कितने काल तक चलेगा? पल्ले के असंख्यात भाग तक। पुनः इस पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण उत्कृष्ट अंतर काल के अनंतर समय में ही सात आठ जनत्वा बहुत से उपशम सम्यक दृष्टि जीव सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार से पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण सासादन का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त हो गया। ये आसान है ना? वो ही अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा तो वही ले लेंगे। कोई भी जीव उस गुणस्थान में नहीं है, उसको कहेंगे नाना जीवों की अपेक्षा अंतर। तो पहला मिथ्या तो गुणस्थान हमने निरंतर कहा था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई जीव मिथ्या तो गुणस्थान में नहीं है, तो वो निरंतर कहा। दूसरा और तीसरे में अंतर पड़ सकता है, तो एक समय जघन्य में जघन्य अंतर और अधिक से अधिक पल्ले का असंख्यात भाग। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतरकाल कहते हैं, उत्कृष्ट अंतर के योग्य नाना जीवगत सम्यक मिथ्यात्व काल के व्यतिक्रांत होने पर, यानी वो काल बीत जाने पर, यानी अपना अपना काल नाना जीवों का बीत जाने पर सभी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व को अथवा मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। तीसरे गुणस्थान के लिए दो ही रास्ते, या तो चौथे में जाएगा या पहले में जाएगा। इस प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान अंतर को प्राप्त हुआ। पुनः पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र उत्कृष्ट अंतरकाल के अनंतर समय में ही मोहकर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि अथवा उपशम सम्यक दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो गया। ये तो नाना जीवों की अपेक्षा हुआ। अब एक जीव की अपेक्षा इन्हीं गुणस्थानों की बात करेंगे। एक जीवम पड़ुच्च जघन्य न, अभी जघन्य काल कितना है, पलिदो वमस्स असंख्येज यदि भागो, उसके पहले वो सासादन वाला लौट कर सासादन में नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि नहीं होता इतने काल में, क्योंकि सासादन वाले के लिए कंडीशन क्या है, उपशम सम्यक दृष्टि, यानी औपशमिक सम्यक्त्व में से वो गिर कर आएगा। असंख्येज यदि भागो, और अंतोमुहूर्तम, अंतोमुहूर्त किसके लिए लिखा होगा, सम्यक मिथ्यात्व के लिए। सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लोपम के असंख्यात भाग और अंतर्मूर्त है। जिस प्रकार से उद्देश होता है उसी प्रकार से निर्देश होता है, इस न्याय से सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान का अंतर पहले कहते हैं। उपशम सम्यक्त्व से पीछे लौटा हुआ, पीछे लौटना है ना, उपशम सम्यक्त्व में से गिर कर आया हुआ कोई एक सासादन सम्यक दृष्टि जीव कितने ही काल तक सासादन गुणस्थान में रहा, कितने ही काल तक यानी एक समय से लेकर छावली तक, और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हो, अंतर को प्राप्त हुआ, जब वो मिथ्यात्व में गया तो सासादन का अंतर चालू हो गया। पुनः पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र काल से फिर उपशम सम्यक तो प्राप्त करने के लिए कितना काल लगा? पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र काल से उपशम सम्यक्त को प्राप्त होकर उपशम सम्यक्त के काल में 6 आवली काल अवशेष रहने पर मैक्सिमम काल गिना है ना, इसलिए एक समय नहीं कहा, अंतर अधिक से अधिक लेना है, इसलिए 6 आवली काल अवशेष रहने पर सासादन गुण स्थान को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण अंतर काल उपलब्ध हो गया। ये जगन्य उत्कृष्ट कितना होगा? हाँ, अर्ध पुद्गल, जैसे स्टार्टिंग में किसी को हुआ, सासादन में आ गया और बीच में मिथ्या तो में चला गया, तो बहुत काल ये हमने अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटकता रहा, फिर प्रथम उपशम सम्यक तो करके अर्ध पुद्गल में थोड़ा कम हो गया ना, थोड़ा कम करेंगे उसमें, डायरेक्ट उसको भेजेंगे नहीं ऊपर, नहीं क्यों का फिर देखो,
मैक्सिमम काल तो वापस तो सासादन में आने वाला
नहीं, क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि अर्धपद पुद्गल परावर्तन
पूरा नहीं लेना ना, इतना इतना छोड़ना कि वो फिर सम्यक तो प्राप्त करे, सासादन में आवे, मिथ्या तो में चला जाए, हाँ, वहाँ से फिर वेदक सम्यक तो करे, वेदक सम्यक के साथ फिर ऊपर आया और फिर क्षायिक हो गया, वैसे वैसे वो बाकी आगे लगाओ, मैंने पढ़ा नहीं है, अभी देखेंगे क्या है। अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन डाला ना, वो कितना डालना, सासादन में आए तो वैदिक समय दृष्टि हो गया बाद में, ये पढ़ेंगे अभी हम, मैंने भी पढ़ा नहीं, मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ, देखो हम पढ़ेंगे। शंका, पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण काल के स्थान में अंतर्मूर्त काल द्वारा सासादन गुण स्थान को क्यों नहीं प्राप्त कराया? जैसे कहते हैं सम्यक तो में से मिथ्यात्व में आने वाला अंतर्मूर्त में फिर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, तो ये सासादन वाले को भी प्राप्त कराओ ना, ऐसा कहते हैं, उसका समझ नहीं, क्योंकि उपशम सम्यक्त के बिना सासादन गुणस्थान के ग्रहण करने का अभाव है, तभी ये कहेगा उपशम सम्यक्त को भी भेज दो। तो यह जीव उपशम सम्यक्त को भी अंतर्मूर्त के काल के पश्चात ही क्यों नहीं प्राप्त होता? नहीं, क्योंकि क्यों नहीं प्राप्त होता उसका? उपशम सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर सम्यक प्रकृति अथवा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना करता हुआ उनकी अंतक कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति को घात करके जब तक सागरोपम से अथवा सागरोपम पृथक्त्व से नीचे नहीं रह करता है, तब तक उपशम सम्यक्तों का ग्रहण करना संभव नहीं है। पहले हमने देखा था, आपको याद होगा, तो एक बार सम्यक तो हुआ ना, उपशम सम्यक तो करके तीन टुकड़े हो गए और फिर वो मिथ्यात्व में चला गया, तो मिथ्यात्व में चलना जाने के पहले ये तीनों की स्थिति तो समान थी, कितनी थी? अंतकोड़ाकोड़ी प्रमाण, मिथ्यात्व में चला गया, ये तो इतनी रही, मिथ्यात्व में चला गया, उदय मिथ्यात्व का चला और नया बंद होगा तो मिथ्यात्व का अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों का चलता रहेगा। अभी सत्ता में क्या पोजीशन है? ये दो तो अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण है और मिथ्यात्व तो अनेक कोड़ाकोड़ी प्रमाण रह गया, बराबर। अभी ऐसी पोजीशन में, अभी लास्ट थोड़ा सागर का काल छोड़कर बाकी जो काल है उसको कहते हैं वेदक योग्य काल। इतने काल में ये तीन दर्शन होने की है ना, और बाकी तो है, यानी 28 की सत्ता वाला जीव कहेंगे इसको, तो इतने काल में उसको वेदक सम्यक्त्व तो अनेक बार होकर छूट सकता है, परंतु इतने काल में उपशम सम्यक्त्व नहीं हो सकता, और उतने काल तक क्या है, इसका मिथ्यात्व रूप से उदय आना चालू हो जाता है, उद्वेलना भी वो वेदक योग्य काल में होती है, उपशम योग्य काल में होती है, उसके पहले नहीं हो सकते, यहाँ जो अलग लिखा है, परंतु उसका ऐसा ही रूल है। उद्वेलना भी, उद्वेलना नहीं, ये दो प्रकृति पूर्ण रूप से मिथ्यात्व रूप में परिणमना, ये भी इतने काल में ये हो गया। उद्वेलना भी नहीं होती, वो तो क्रम से वो मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती है। ये जो इतनी छोटी होगी तो यहाँ ये जो सम्यक तो अगर नहीं करेगा, सम्यक तो करेगा तो उपशम सम्यक तो करेगा, और नहीं करेगा तो यहाँ उद्वेलना होगी। इसी में उपशम हो सकता है, यह कौन सा, ये सात प्रकृतियों का उपशम समझो। ये भी ये छूट गया उसका, इतने भी चला गया, मान लेते इतने काल में भी नहीं हुआ, और इसकी तो ये दो प्रकृति खलासी हो गई, पूर्ण एक मिथ्यात्व रहा, तो ये तो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा, वो पांच प्रकृतियों का उपशम कर सकता है अभी। अब जो इसको सम्यक तो प्राप्त होगा तो फिर प्रथम उपशम सम्यक तो ही होगा, या उतने काल में जब तक ये दो प्रकृतियों की सत्ता बहुत कम रही है तो इन तीनों को वो एक साथ उपशमित कर सकता है। इसके पहले तीनों को एक साथ उपशमित करने की उसकी योग्यता नहीं थी। इसको कहते हैं वेदक योग्य काल और इसको कहते हैं उपशम योग्य काल। वो कम हो, अंत कोड़ा कड़ी हो ही जाएगी ना उसकी फिर से। हाँ वो कोड़ी ये तो रह जाती है। हाँ फिर उसमें से वो तो अन्य दो प्रकृति बदलती रहती है ना, जब वेदक सम्यक तो होकर फिर उसने मिथ्यात्व में से वो उसका संक्रमण होता रहता है। उपशम सम्यक तो जैसा गुण संक्रमण नहीं होगा चौथे गुणस्थान के लिए, परंतु उसका क्या है, थोड़ा थोड़ा जिसको कम मात्रा में मंद प्रमाण में उसका भी ये दो प्रकृति रूप से संक्रमण होता रहेगा। सम्यक्त का उदय नहीं होता, कौन से सम्यक्त, वेदक सम्यक्त तो हो सकता है ना,
हो सकता है ना?
वही तो, बहुत बार, अनेक बार, बार बार हो सकता है, वो तो छूटना चलना, वो ये
तो
कहा ना, वो तो कम होती रहेगी, वो तो कम ज्यादा, हाँ तो उसमें होता रहता है। हाँ, और उसमें से वो सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति भी होता रहेगा थोड़े प्रमाण में, जैसे पहले पूरे ही तीन टुकड़े हुए थे उपशम सम्यक के काल में, अब यहाँ जो यथा योग्य है वो होता रहेगा। तो उसके पहले वो उपशम सम्यक तो हो नहीं सकता, ये बात बताई, हो गया समय, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते